ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट संघीय संसद की संयुक्त बैठक में कल किया जाएगा पेश। संसद में पार्टी की भूमिका अधिक प्रभावकारी बनाने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल द्वारा विदेश में रह रहे नेपालियों से नेपाल वापस लौटने का आग्रह। और बिहार के पटना के गंगा नदी में नाव डूबने से हुई 5 लोग लापता। अब समाचार विस्तार से। सरकार का आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट को कल संघीय संसद की संयुक्त बैठक में पेश किया जाएगा। संघीय संसद की कल दोपहर 4 बजे होने वाली संयुक्त बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले आर्थिक वर्ष का बजट प्रस्तुत करेंगे। संघीय संसद सचिवालय के अनुसार बजट प्रस्तुति की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नए भवन के प्रतिनिधि सभा कक्ष में संयुक्त बैठक आयोजित करने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक फिनिशिंग कार्य पूरा नहीं होने के कारण बजट प्रस्तुति बहुउद्देश्यीय हॉल से ही की जाएगी। यह जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी ने दी। संघीय संसद में प्रस्तुत होने वाले आर्थिक वर्ष के बजट का रेडियो नेपाल द्वारा सीधा प्रसारण किया जाएगा। नेपाली कांग्रेस ने संसद में पार्टी की भूमिका को और प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। आज सिंहदरबार में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद प्रमुख सचेतक वासना थापा ने बताया कि बैठक ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह संसद में उपस्थित न होकर जनता के प्रति उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शाह के संसद में उपस्थित न होने तथा गणतंत्र दिवस समारोह में संबोधन न देने के विषय पर कांग्रेस ने गंभीर ध्यानाकर्षण व्यक्त किया है। प्रमुख सचेतक थापा ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी की धारणा है कि आगामी बजट में आधारभूत संरचना की तुलना में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि वर्तमान में चर्चा के लिए सार्वजनिक किए गए गैरावासीय नेपाली संबंधी विधेयक के मसौदे पर सभी संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की जाएगी। आज मंत्रालय में एसोसिएशन ऑफ नेपाली ओरिजिन ANO को केंद्रीय समिति की ओर से उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील कुमार पंत के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में सार्वजनिक किया गया मसौदा एक प्रकार का शून्य ड्राफ्ट है और इसे सभी पक्षों के साथ विस्तृत चर्चा करने के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ANO को ध्यानाकर्षण पत्र स्वीकार करते हुए मंत्री खनाल ने बताया कि उन्होंने इस विधेयक के संबंध में एक प्रश्नावली तैयार की है और संसद में पेश करने से पहले इस विषय से जुड़े सभी सरोकार वाले पक्षों से राय और सुझाव लिए जाएंगे। सरकार के प्रभावकारी प्रबंधन के कारण देश में धीरे धीरे सिंचाई योग्य क्षेत्रफल का विस्तार होता जा रहा है। अर्थ मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक चालू आर्थिक वर्ष की मंत्रालयगत प्रगति विवरण के अनुसार ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा संघीय स्तर पर संचालित परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधा 15,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र तक पहुंच गई है। 8 महीने पहले बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बीपी राजमार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 2 दिन पहले पूर्वाधार विकास सचिव गोपाल प्रसाद सिगदेल और नेपाल के लिए जापान के राजदूत मैदा तोरू द्वारा शिलान्यास किए गए सड़क पुनर्निर्माण कार्य ने गति पकड़ी है। उक्त राजमार्ग का पुनर्निर्माण जापान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। पिछले वर्ष आई बाढ़ और भूस्खलन से बीपी राजमार्ग के लगभग 30 किलोमीटर सड़क खंड को नुकसान पहुंचा था। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जाइका के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग तथा नेपाल सरकार के निवेश से राजमार्ग का उन्नयन सहित पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2082-83 के अनुसार भूकंप से क्षतिग्रस्त 1136 स्वास्थ्य संस्थानों में से फागुन 2022 तक 1051 संस्थानों का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। निजी आवास पुनर्निर्माण के तहत फागुन 2082 तक 835,185 लाभार्थियों की पहचान की गई, जिनमें से 834,303 लाभार्थियों ने पहली किस्त प्राप्त कर ली है। इसी तरह 770,838 लाभार्थियों ने दूसरी किस्त तथा 743,987 लाभार्थियों ने अंतिम किस्त प्राप्त की है। सर्वेक्षण के अनुसार अब तक 773,987 निजी आवासों का पुनर्निर्माण पूरा हो चुका है। निजी क्षेत्र के छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ और नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में हुई भारी वृद्धि से निर्माण व्यवसायियों पर पड़े आर्थिक और मानसिक दबाव को संबोधित करने के लिए सरकार से आग्रह किया है। दोनों संगठनों ने आज अलग अलग विज्ञप्ति जारी कर निर्माण व्यवसायियों की समस्या समाधान कर समग्र अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने की मांग की है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ने विदेश में रह रहे नेपालियों से स्वदेश लौटने का आग्रह किया है। धादिंग जिले के त्रिपुरा सुंदरी गांव पालिका एक स्थित सल्यानटार के नरसिंह धाम में आयोजित एक महीने लंबे पुरुषोत्तम महोत्सव के अवलोकन के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभामुख अर्याल ने कहा कि देश के संविधान और कानून का पूर्ण पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सार्वजनिक किए गए भाद्र 23-24 के आंदोलन संबंधी अनुसंधान प्रतिवेदन को लागू करने की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसे द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि तत्कालीन सरकार द्वारा गठित गौरी बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट अधूरी, अपूर्ण और अस्पष्ट होने के कारण की धारणा को इससे और पुष्टि मिली है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वयं कार्की आयोग के अध्यक्ष पर भी सूक्ष्म जांच की आवश्यकता बताई है, जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले रिपोर्ट सार्वजनिक न किए जाने के पीछे नियोजित उद्देश्य होने की आशंका और मजबूत हुई है। मुस्लिम समुदाय का दूसरा प्रमुख पर्व बकरीद अर्थात ईद उल अजहा आज देशभर की मस्जिदों में मनाया जा रहा है। ईद उल फित्र अर्थात रमजान पर्व के 70वें दिन बकर ईद मनाने की धार्मिक परंपरा है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज सुबह स्नान कर नजदीकी मस्जिद या ईदगाह में जाकर सामुदायिक नवाज अदा करते हैं। नवाज के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की परंपरा भी निभाई जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पटना में आज सुबह एक नाव गंगा नदी में पलट गई। नाव में सवार 7 लोगों को बचा लिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने बताया कि अब तक 2 लोगों के शव मिले हैं। 7 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि अन्य 5 लोग लापता है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। प्रशासन ने बताया कि आज सुबह लगभग 5:45 बाढ़ अनुमंडल के उमानाथ घाट के समीप बिंद टोली के 14 लोग नाव पर चढ़ कर समस्तीपुर जिला के सुल्तानपुर दियारा मोहीउद्दीन नगर गए थे। अक्सर लोग परवल तोड़ने और खेती किसानी के दूसरे कामों के लिए वहां जाते हैं। वापस लौटने के क्रम में तेज हवाओं के कारण सुल्तानपुर दियारा समस्तीपुर के पास नाव पलट गई। खबर लिखे जाने तक 7 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन 5 लोग लापता है। अब तक 2 शव बरामद हो चुके हैं। समस्तीपुर और पटना जिला प्रशासन मिलकर राहत कार्य चला रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार की आगामी आर्थिक वर्ष 2083-84 का वार्षिक बजट संघीय संसद की संयुक्त बैठक में कल किया जाएगा पेश। संसद में पार्टी की भूमिका अधिक प्रभावकारी बनाने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल द्वारा विदेश में रह रहे नेपालियों से नेपाल वापस लौटने का आग्रह। और बिहार के पटना के गंगा नदी में नाव डूबने से हुए 5 लोग लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।